अच्छा, अब एक और ऑनर जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया, पहला ऑनर क्या था? इल्म दिया। तो पहला ऑनर जब भी आपसे पूछा जाएगा तो अल्लाह ताला ने उसको इल्म अता फरमाया। और दूसरा ऑनर, व इज कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम, और जब कहा हमने फरिश्तों से सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, फसजदू, तो उन्होंने सजदा किया। फा से पता चलता है कि उसी वक्त सजदा कर लिया उन्होंने, ऐसे नहीं कि हम सोचेंगे अभी, अच्छा अब पहले हम कन्विंस तो हो जाएं, पहले हम मशवरे तो करें, नहीं, फसजदू, तो उन्होंने सजदा किया। इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। देखिए अल्लाह ताला ने, एक ये भी बात यहाँ पे देखें समझ आती है ना, कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों ने जो कंफ्यूजन अपनी जाहिर की थी, अल्लाह ताला ने किस तरह उनको मुतमईन किया ना, उनके सवाल के कैसे जवाब दिए, यानी किस तरह प्रैक्टिकली उनको दिखा दिया कि देखो तुम्हारी बात सही नहीं थी। ये नहीं उनको किया कि तुम कैसे ये कह सकते हो और तुम बस खत्म, अब तुम्हारा नामो निशान खत्म, क्यों तुमने एक बात क्यों की, नहीं, अल्लाह ताला ने उनकी बात का जवाब, इसमें भी अल्लाह की कितनी हिकमत है ना कि वो लाजवाब हो गए कि देखो उनको दिखा दिया कि अगर तुम इस चीज का इल्म नहीं रखते, ये जो चीजें हैं तुम्हारे सामने पड़ी हुई, तो तुम्हें कहाँ पता है कि फ्यूचर में क्या होगा और ये इंसान क्या क्या करेगा, है ना। तो अल्लाह ताला ने उनको सेटिस्फाई किया। और हमें भी ये होना चाहिए कि जब हमसे हमसे भी कोई सवाल करे, मसलन है हमारे बच्चे सवाल करते हैं, तो हम उनको स्नब ना करें कि नहीं, ये सवाल नहीं तुम कर सकते, ये कैसा, नहीं, उनकी बातों का जवाब उनको दे, उनको सेटिस्फाई करें। अगर हमने उनको सेटिस्फाई नहीं किया तो वो यही सवाल जाके गूगल पे करेंगे, वो यही सवाल किसी और से जाके करेंगे, जहां पे शायद हम कभी ना चाहते हो कि वो वहां जाके फंसे, ठीक है। मगर हमें चूंकि खुद ही नहीं पता होता ना, तो हमारा वक्त तो गुजर गया जो हम खामोश रहे, हम लोगों ने ऐसे सवाल नहीं किए अपने पेरेंट्स से। लेकिन आज के बच्चे बहुत से ऐसे सवाल आप करते हैं, तो माओं को समझ होनी चाहिए कि कैसे इनको जवाब देना। अगर अल्लाह ताला फरिश्तों को बता सकते हैं और समझा सकते हैं उनको, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई आर की बात नहीं है और क्वेश्चन करने में कोई मसला नहीं है, और हमें भी उसको पॉजिटिव लेके उसका जवाब देना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला ने इसमें आर नहीं समझी कि इनको क्यों मैं इनके सामने करूं, ठीक है ये समझते हैं जो मर्जी समझते रहे, नहीं। अब देखें कि अल्लाह ताला ने इस इल्म की बदौलत उनको कहा कि फरिश्तों अब सजदा करो आदम के लिए, और सबने सजदा कर लिया। यहां से एक और भी मुफस्सरीन ने बात निकाली, उन्होंने कहा ली का मतलब है यानी आदम की वजह से, ली ये सबब वाला है। बाज मुफस्सरीन ने, चूंकि ये भी तफसीरों में लिखा हुआ है तो मैंने कहा आपके सामने रख दूं, कि आदम की वजह से सजदा करो, यानी अल्लाह को ही उन्होंने सजदा किया, लेकिन आदम की वजह से, कि अल्लाह ताला ने देखो कि कैसी एक मखलूक ये पैदा की है। दूसरे कहते हैं कि नहीं, ये सजदा तकरीमी था, यानी सजदा वो वाला नहीं था इबादत वाला सजदा, बल्कि ये एक और सजदा है जो किसी की ऑनर देने के लिए, इज्जत देने के लिए। पुराने जमानों में बादशाहों के भी आगे ऐसे झुक झुक के जाते थे ना वो, तो ये सजदा पहले जायज था, लेकिन फिर आपको पता है याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, उनको भी, उनकी शरीयत के अंदर भी ये जायज था, इसीलिए उनके भाइयों ने सजदा किया था ना। उसके बाद फिर ये सजदा इस जमाने के बाद फिर हराम हो गया, फिर उसके बाद कोई किसी को सजदा तकरीमी नहीं कर सकता, इवन ये कि झुक झुक के किसी के पैर छूना या किसी के आगे होना, इवन उलमा ने ये भी मकरू किया है कि आप जब किसी को सलाम करते हैं तो आप थोड़ा सा झुक जाते हैं ना सलाम करने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए। तो ये कह रहा है ऑनर के लिए इंसान हमेशा झुकता है, तो ये ऑनर दिलाया गया आदम अलैहिस्सलाम को। तो उलमा ने कहा इस तरह का जरा सा झुकना सलाम करने के लिए, ये भी फरमाया मकरू है, नापसंदीदा है, ये भी नहीं करना चाहिए। इंसान का सर झुके तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुके, बस, चाहे वो रुकू की पोजीशन है, चाहे वो झुकने की कोई भी पोजीशन, کیونکہ اس میں تعظیم بھی ہے عبادت بھی ہے. تو ہماری شریعت میں ناجائز ہے یہ جو آج کے دور میں آپ کئی ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ پیروں فقیروں ان کے آگے لوگ جھک جھک کے جاتے ہیں, اللہ اکبر استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی گمراہی سے کہ اس کے بعد پیچھے بھی پلٹتے ہیں ان کے طرف پیٹھ نہیں کر سکتے, پھر بھی جھکے جھکے ہی پیچھے جاتے ہیں. مطلب مجھے خدا خوفی نہیں ہے کہ کیسے لوگ ہو کہ جو سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے. کہ صحابہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا تھا, کہ ایک صحابی آئے ہیں دیکھ کے وہاں سے کہ بھئی وہاں لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں, وہ اپنے بادشاہوں کرتے ہیں ہم آپ کو کیوں نہ کریں. آپ نے فرمایا نہیں, سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں, اگر کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے, اگر جائز ہوتا وہ بھی, تو لیکن جائز ہے ہی نہیں تو کوئی بھی نہیں کسی کو کر سکتا. اب کئی دفعہ سوال کرتے ہیں لوگ, یہ کراٹے ہیں یہ سیکھتے ہیں اس میں جھک جھک کے وہ ایسے کرتے ہیں, تو پھر اب ہم کیا کریں؟ تو ان کو کہیں کہ ہماری شریعت کے اندر, ہمارے دین کے اندر یہ جائز نہیں ہے, ہمارا بچہ یہ نہیں کرے گا. ہم اتنا ڈرتے ہیں نا, آئے وہ انہوں نے کہہ دیا اب ان کا تو یہ طریقہ ہے, ہم کیسے کہیں؟ نہیں, آپ بتائیں, آپ بتائیں گے نہیں تو ان کو کیا پتا چلے گا, ان کو تو نہیں پتا نا. تو ہمیں جب یہ سمجھ ہے کہ ہمارے دین میں یہ ناجائز ہے, اس طرح کئی کلچرز میں ہے کہ اپنے بزرگ ہیں تو ان کے آگے بالکل وہ تقریباً رکوع کی پوزیشن میں چلے جاتے, تو یہ جائز نہیں ہے. یہ سر جھکے تو صرف اللہ کے آگے جھکے گا, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے آگے جھکا کے دیکھو کتنے ساری جگہ جھکنے سے ہمیں محفوظ رکھا, ہمیں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں, یہ پیشانی کہیں نہیں جھکے گی, کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, چاہے وہ بادشاہ ہے, چاہے وہ کوئی عالم ہے, چاہے کوئی پیر فقیر ہے, چاہے کوئی بھی ہے, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں جھک سکتے تو اور کوئی کس قابل ہے. تو ان چیزوں کو سمجھے کہ یہ ہماری شریعت میں ناجائز ہے, ٹھیک ہے. اور اسی سے کسی کی گمراہی کا آپ کو پتا چل جائے گا, جو اپنے لیے سجدے کرا رہا ہوگا کہ یہ آدمی خود کتنا گمراہ ہے جس کو یہ بات نہیں پتا. اگر ایسی چیز ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب تھے, سب سے پہلے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے سجدہ کرتے, لیکن اگر وہاں نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل ہے کہ پھر کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے اور سوائے اللہ کے, ٹھیک ہے. تو سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. یہاں سے پھر اس کی خباثت سامنے آئی, وہ جو اندر چھپا ہوا چور تھا نا وہ سامنے آ گیا. اب اس نے کیوں نہیں سجدہ کیا, کیا پرابلم تھا اس کو؟ ابا اس نے انکار کیا, واستکبر, اس نے تکبر چاہا. دیکھیں نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ابلیس کے بھی تو سامنے ہو رہی تھی نا, کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے نام پوچھے یہ کہ اس, وہ کنونس نہیں ہوا, باقی سب دیکھیں کنونس ہو گئے. انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک, انہوں نے کہا اللہ تو علیم ہے حکیم ہے, وہ اتنی اچھی طرح سمجھ گئے, انہوں نے ذرا دیر نہیں لگائی, انہوں نے کہا ہم سجدہ کر. لیکن جب خباثت اندر ہو نا تو پھر وہ ظاہر ہو ہی جاتی. اب ابلیس کے اندر چونکہ تکبر تھا, وہ تھرو آؤٹ کنونس نہیں ہوا, لیکن وہ چھپا رہا کیونکہ ظاہر اس میں تو کہیں نہیں پتا چلنا تھا. جب حکم ہوا سجدے کا تو اب اللہ ٹرائلز زندگی کے اندر لاتا ہے, چیک کرتا ہے انسان کو, ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے. دعوے تو بہت ہیں لیکن ہے کیا تمہارے اندر؟ بہت عرصے سے یہ عبادت کر رہا تھا فرشتوں کے ساتھ مل کے, تو انہیں کے سٹیٹس کا ہو چکا تھا. تو جب اللہ کو لیکن پتا ہے نا کہ اندر کسی کے کیا ہے, کوئی چاہے بن بن کے جتنا بھی دکھائے اللہ کو پتا ہے. اب وہ کنونس نہیں ہوا, سارے کنونس ہو گئے. اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو آپ دلیلیں دے دو, بعض لوگوں کو آپ سامنے پروف لے آؤ, بعض لوگوں کو آپ کتنا بھی قائل کر لو, قرآن حدیث ان کے سامنے رکھ دو, جن کے اندر برائی ہوتی ہے اور انہوں نے کہا ہوتا ہے اندر تکبر ہوتا ہے نا کہ میں بڑی چیز, میں کیسے مان جاؤں, میں تو نہیں مانتی, وہ کبھی نہیں مانتے. یہ نہیں ہوتا کہ حق میں کوئی کمی ہوتی. اب ان کے دیکھیں سارے فرشتوں نے مان لیا, اس نے نہیں صرف مانا. تو بات کمی حق میں نہیں ہے, کمی اس بندے کے اندر ہوتی ہے, وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے, میں جھکوں کیسے, میں نے اگر کہہ دیا کہ ہاں میں قائل ہو گئی, میں نے مان لیا, تو میری تو بڑی بےزتی ہو جائے گی. تو کچھ نہ کچھ اندر ہوتا ہے इसलिए समझ नहीं आती। इसलिए आप जितना मर्जी समझाने, तो ये ना समझे कि सारी दुनिया समझ जाएगी जब आप समझाएंगे, दलायल देंगे और आप कन्विंस करेंगे लोगों को, तो पता नहीं उसने समझ ही जाना है। नहीं समझते, जिनकी शैतानी सिफात होती है, जिनके अंदर ये वाली सिफत खास तौर पे बड़ाई की, वो कभी भी नहीं समझते। तो उसने रिफ्यूज कर दिया साफ। और अबा जो है ना, अबा ये कोई आम इनकार नहीं है, शिद्दत के साथ इनकार करना, इसमें शिद्दत है। उसने कहा मैं तो कभी भी नहीं कर सकता, मैं तो नहीं करूंगा, बस तक बारा। और उसने बड़ाई चाही अपने लिए, उसने बड़ा बनना चाहा, यानी बड़ा तो नहीं है लेकिन दिल में चाहत है बड़ा बनने की। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। वह काना मिनल काफिरीन, और वो हो गया काफिरों में से, इनकार करने वालों में से। काफिर कैसे हो गया? हम तो काफिर उसको कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता। वो कैसे काफिर हो गया? वो तो अल्लाह को मानता है, अल्लाह तला से बात भी करता है, अल्लाह से दुआ भी करता है कि अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, सारी बातें हुई हैं उसकी। वो तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो अल्लाह को नहीं मानता। उसने अल्लाह के एक हुक्म का इनकार किया, अमली काफिर हो गया। अल्लाह के हुक्म को कहना कि मैं इसको नहीं मानती, मैं नहीं मानती कि नमाज है, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी कोई बात अगर करता है, या मैं नहीं मानती कि ये कोई ज़कात वगैरह है जरूरी है, या मैं नहीं मानती फलां अल्लाह की बात को मैं मानती नहीं, ये मैं नहीं करती वो एक अलग बात है, या मेरे से नहीं हो पाता ये एक अलग बात है। ये जो कह देना होता है ना, मैं नहीं मानती, जो मर्जी कर लो मैंने नहीं माना, ये है जो इंसान को अमली काफिर बना देता है, कि इंसान यानी कुफर के अंदर चला जाता है ना। और ये देखिए कहाँ था इबलीस और कहाँ पहुंच गया मिनल काफिरीन। और ये इतनी को डरा देने वाली बात है, क्योंकि कुर्तुबी लिखते हैं अपनी तफसीर के अंदर कि इबलीस ने अल्लाह की इबादत 80,000 ईयर्स की थी। 80,000 ईयर्स वो अल्लाह की इबादत करता रहा था, मगर एंड क्या हुआ? एंड क्या हुआ? इतना जोर से गिरा, इतनी ऊपर जाके कि फिर संभल ही ना सका। इसीलिए इंसान को हमेशा डरते रहना चाहिए। ये नहीं कि जो आज मेरी हालत है ईमान की वैसी ही रहनी है। हमें नहीं पता हमारी मौत के बाद क्या है। मुझे खुशकिस्मत लगते हैं वो लोग जो ईमान पे दुनिया से जाते हैं, जो नेकी पे दुनिया से जाते हैं, कहते हैं वो बहुत बहुत खुशकिस्मत है। क्यों? इसलिए कि उनका तो मामला उस पर क्लोजर हो गया ना, हमारे अभी क्लोजर का कोई पता नहीं है। हमारा क्लोजर किस पे होगा? हमारा खात्मा किस पे होगा? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीन, अमाल का दारो मदार उनके खात्मे पे है। कि आप एंड कैसे करते हैं? अब देखें बहुत अच्छा आप करते रहे, जब एंड आया आखिरी पारे पे आए तो सारा छोड़ छाड़ के बैठ। आपने जो काम शुरू किया होता है उसको जब तक मुकम्मल नहीं करेंगे, आप देखें कोई भी काम है, आप दुनिया का ही ले लें, आप खाना बना रही हैं, खाना बनाते बनाते आपको कोई और ख्याल आ गया, छोड़ के वहां से चली गई, आधा पका आधा कच्चा है, किसी के खाने के काबिल होगा नहीं। कोई भी काम आप ना एंड तक पहुंचाते हैं। एक बच्चा सारा साल स्कूल में पढ़ता रहा, जब इम्तिहान का दिन आया तो गया ही नहीं स्कूल, क्या होगा उसका? तो हमारी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है कि हमारी मौत किस हालत में आती है। चाहे सारी जिंदगी नेकियां करते रहो, अगर वो टाइम पे इंसान भटक जाता है, उस टाइम पे इंसान अपना ईमान खो देता है, तो सब किया कराया गारत। और इसका देखिए सारी उम्र का कितने हजारों, चलो अगर 80,000 ना भी माने और कुछ कहें, फिर भी लंबी मुद्दत तक ऐसे ही नहीं उसको ये इतना मकाम मिल गया था कि फरिश्तों में रहने लगा था। हालांकि वो तो जिन था, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वो जिन्नों में से था, लेकिन फरिश्तों तक के स्टेटस तक कैसे पहुंचा? इतनी इबादत गुजारी के जरिए, इतनी इबादत थी उसके अंदर। मगर जब इबादत भी तकब्बुर पैदा कर दे तो इंसान फिर इबलीस बन जाता है। इबादत के साथ क्या होनी चाहिए? आजी आजी आजी। अगर इबादत ऐसी हो जाए कि दिमाग आसमान पे चढ़ गए हैं, हम तो आलिम बन रही हूं, आलमा बन गई हूं, दूसरों से ना सलाम करना ना दुआ ना कुछ, मैं तो पता नहीं क्या चीज हो गई हूं, मेरे तो बस मैं तो तहज्जुद गुजार, मैं तो तस्बीहां ही नहीं मेरी खत्म हो गई। उसके बाद इंसान के अंदर अपनी बड़ाई का एहसास आ जाए कि वो किसी को कुछ समझे ही ना,
लोग मेरे पास आए, मैं तो यहाँ पे मुझे बिठाएं, मैं तो अच्छा आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इतना बड़ा कारनामा किया आपने मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया, मुझे मुझे आपने कोई अप्रिसिएशन ही नहीं दी, ये क्या है? ये वही है अपनी बढ़ाई, इसकी तारीफ क्यों हो रही है, मेरी क्यों नहीं हुई, इसको क्यों इतना स्टेटस मिल गया। अब उसको ये था कि देखा उस वक्त तक तो चुप रहा, ठीक है अपना चल रहा था, ठीक है फरिश्तों के अंदर बहुत बड़ा था उसको, उसमें भी उसके अंदर बड़ाई थी, अल्लाह को पता था अंदर तो था ना ये चोर, लेकिन अब ये जाहिर हुई है जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, क्योंकि अब तकब्बुर से आगे क्या चीज ने जन्म लिया, हसद। जब तकब्बुर आता है तो हसद खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि फिर इंसान किसी को नहीं देख सकता कि कोई और वो भी बड़ा हो जाए, बड़ी तो सबसे मैं ही रहूं। अब वो हसद ने देखिए क्या किया फिर, कि उसकी वजह से वो नहीं, हसद किस बात पे था, आदम अलैहिस्सलाम को कौन सी चीज मिली थी जिसके ऊपर उसको हसद था, अभी तो उनको कुछ ऐसा नहीं मिला, इल्म अल्लाह ताला ने उनको दिया था, और कोई बादशाहत नहीं मिल गई थी कोई, बल्कि उनके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, खिलाफत होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी का एक चीज है, लेकिन उसको ये है कि इसको क्यों इतना पूछा जा रहा है, इसको क्यों इतना ऑनर दिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं, असल तो मैंने काम किए, मैंने इतने अरसे से इबादत की है। तो ये देखिए पहला कत्ल भी तो इसी वजह से हुआ था, इसलिए नहीं होता कि कोई माल जायदादें थी जो बटनी थी, एक की कुर्बानी कबूल हो गई, एक की नहीं हुई, सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने फरमाया एक भाई ने दूसरे को कत्ल कर दिया, कि तुम्हारी क्यों कबूल हो गई मेरी क्यों नहीं हुई। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनको कोई ज्यादा दो का तो नहीं मसला था, बस ये बाप इसको क्यों ज्यादा पूछता है। तो हम समझते हैं ना माल और स्टेटस की वजह से हसद होता है, ठीक है होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा हसद जिस चीज से होता है ना, कि इसको क्यों इतनी अहमियत मिल गई, इसको क्यों इतना पूछा जा रहा है, इससे क्यों इतना प्यार करते हैं, इसका क्यों मकाम हो गया, लोग इसको क्यों पूछते हैं, लोग इसके आगे क्यों पीछे क्यों होते हैं, आप वो हैरत होगी कि माल से ज्यादा इसकी जेलसी होती है। और बाज दफा दीन वालों के अंदर, दीन के काम करने वालों में ये हो जाती है, इसको क्यों ग्रुप इंचार्ज बना दिया, मुझे बनाना चाहिए था, ये क्यों ऐसे हो गए, मुझे ये मकाम और मर्तबा मिलना चाहिए था, मेरे गुण गाए जाने चाहिए थे, मुझे पूछना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं पूछा गया, मैं इतना काम करती हूं, मुझसे कोई नहीं मशवरा लिया गया, इसकी क्यों तारीफें हो रही हैं, मेरी कोई कदर नहीं करता, मैं काम कितना करती हूं, मुझे मानते ही नहीं है। आप देख लें कि आज बहुत बड़ी बातें नहीं है, कोई पार्लियामेंटों की बातें नहीं हो रही, कोई यूएन में तकरीर करने की बात नहीं हो रही, छोटी छोटी जगहों पर जरा सी कुर्सी के लिए, जरा से ओहदे के लिए, जरा सी चीज के लिए कितना इंसान तकब्बुर का शिकार होता है, और कितना हसद होता है उसके अंदर कि उसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और क्यों, किसी और को कुछ क्यों मिल गया, और तकब्बुर इतना भरा होता है, कल तक तो मैं खुद ग्रुप इंचार्ज थी, आज मैं किसी और को ग्रुप इंचार्ज मान लूं अपने ऊपर, और मैं जस्ट एक स्टूडेंट बन के उसकी बात सुनूं, ये कैसे होगा। कल तो मैं थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और मेरी चलती थी, आज मैं किसी की सुनूं। तो ये चीजें जॉब्स में भी होती हैं, बहन भाइयों में भी होती हैं, कहीं आप देखें कई रिश्तों के अंदर ये चीजें हो जाती हैं, और इसी ने शैतान को तबाह किया, और वो चाहता है कि हम तबाह हो जाएं इसी के जरिए, चाहे वो कोई दीन वाले हैं, चाहे वो कोई दीन वाले नहीं हैं, दीन के काम कर रहे हैं, दुनिया के काम कर रहे हैं, सबके अंदर ये डालता है। इसी वजह से आज देखें आप क्यों लोग एक दूसरे को काटते हैं, हम क्यों कहते हैं वो जी तो आजकल तो देखें क्या वक्त आ गया, कोई किसी को काट रहा है, उसको भी वो काट रहे हैं, दीन वाले भी एक दूसरे को काट रहे हैं, क्यों है यही इस तकबारा और उसकी वजह से हसद तकब्बुर के, हम बड़े हम ज्यादा, हालांकि अगर तकब्बुर आ जाए इंसान के अंदर तो ना उस इल्म का कोई फायदा है, हाँ ना उस मर्तबे का या कुर्सी या जो जो भी उसको मिला हुआ है उसको कोई फायदा है, अगर तकब्बुर आ जाए ना उस इबादत का कोई फायदा है, ना लोगों का जो फैन है फॉलोइंग है ये है, इसका कुछ फायदा नहीं अगर इंसान में तकब्बुर। अब उसकी तो बेटे को देखें कितनी पहुंच हो गई थी, इबलीस भी पहुंचा हुआ था, जिसको हम कहते हैं ना पहुंचा हुआ, बड़ा पहुंचा हुआ, तो इबलीस भी पता नहीं पहुंचा हुआ इतना पहुंच गया था कि वो तो फरिश्तों तक ही पहुंच गया था, वो उनके अंदर ही बैठता था उठता था। और जब ऐसी चीज हो अंदर तो फिर अच्छों की कंपनी ने भी उसको कोई फायदा नहीं दिया। और क्या उसको कहां से वो गिरा और कहां पहुंचा? तो कभी अपनी इबादत, अपने इल्म, अपने किसी अमल के ऊपर कोई तकबर ना दिल के अंदर लाए कि हम ये करते हैं, हम ऐसे, हम मैं ये मैं वो, नहीं। इंसान हमेशा झुका हुआ रहे। जो भी इंसान झुक जाता है ना उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के ये फरमाया, अगर हमें कोई स्टेज पे नहीं बुलाता तो हमारी कोई कमी नहीं आ जाएगी, कोई हमारा नाम नहीं लेगा तो कोई कमी नहीं आएगी, किसी की इज्जत में कोई कमी नहीं आती। तो ये, और दूसरी एक और बहुत अहम बात हमें जो पता चलती है, देखिए सुभान अल्लाह, फरिश्तों ने सजदा किया ना, और किस वजह से? आपको मैंने बताया कि अब उन्होंने देख लिया आदम अलैहि सलाम के पास इल्म है, इस इल्म की वजह से आदम अलैहि सलाम को फजीलत मिली ना, ये पहला ऑनर उनको मिला। तो हदीस में आता है, आपने वो हदीस सुनी होगी, मैंने आपको इल्म की फजीलत में बताई भी थी कि तालिब इल्म के लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। वो भी क्यों है? अब सजदा तो नहीं हो सकता, लेकिन वो क्यों है? वो भी उनके इल्म की के ऑनर में, उसकी ताजीम में, कि ये इल्म के लिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी चीज है इल्म। तो अब देखें कि जब उसने इनकार कर दिया और तकबर, हाँ मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये जो तकबर है ना, इसके बारे में हदीस में आता है, एक तो ये सबसे पहला गुनाह है, इसके बारे में हदीस में आता है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकबर होगा ना, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इतना छोटा सा भी तकबर, इतना इसी भी अपनी बढ़ाई का एहसास और मैं कोई चीज हूं, तो इसको निकालने की जरूरत है अपने अंदर से, इस पे वर्क करने की जरूरत है, आजी की जरूरत है। وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, और कहा हमने। अच्छा अब ये एक सवाल है कि ये तकबर को निकालें कैसे, इसके ऊपर वर्क कैसे करें, ये भी अच्छी बात है कि कैसे इस तकबर का इलाज कैसे किया जाए। लेकिन जितना जितना इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास करता है ना, उसके अंदर से तकबर खत्म हो जाता है। जब उसको ये पता चलता है कि सारा कुछ तो मेरे पास लिए दिए का, मेरा अपना क्या, अगर इल्म है तो वो भी अल्लाह ने दिया, अल्लाह चाहे तो छीन ही ले इस इल्म को, हिदायत है तो अल्लाह ने दी भी है। अगर मैं कोई करती हूँ, अब हमारे अंदर क्या तकबर आया था, जूं ही हमें कोई चार बातें क्यों ना आ जाए या हम कोई काम करने लगे, सारी दुनिया ऐसे लगती बस बहुत ही हकीर और बहुत ही सारे गुनाहगार हैं, उफो ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे, तो इतना भी नहीं आता इनको, इतना भी नहीं पता इनको। नहीं, अगर आज मुझे दो बातें आ गई हैं तो वो मेरा कोई अपना कमाल नहीं, वो अल्लाह ने दे दी हैं। तो फिर तो जब हर नेमत को समझेंगे कि अल्लाह ताला की दी हुई है, और ये सारी नेमतें, चाहे वो मादी नेमतें हैं, चाहे वो कोई मानवी नेमत है जैसे हिदायत है या अकल है या समझ है या कोई हुनर है, चाहे सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, तो वो फिर बंदा खुद ब खुद आजिज हो जाता है ना, खुद ब खुद झुक जाता है कि मैं क्या हूं फिर, कुछ भी नहीं, खाली हाथ। जैसे दुनिया में आए थे तो क्या थे, खाली हाथ थे, बदन पे कपड़े भी नहीं थे, तो ये सब तो मुझे अल्लाह ने दिया हुआ। तो फिर अल्लाह के आगे झुके और इन चीजों का एहसास करे कि ये मैं ओन नहीं करता, तो फिर तकब्बुर किस बात का, बड़ाई किस बात की। जो इंसान फकीर हो और उसने मांगे तांगे की चीजें पहनी हो, वो तकब्बुर कोई कर सकता? तो जितना ये एहसास ज्यादा होगा फिर तकब्बुर खत्म होगा, और दूसरे लोगों को हकीर जानना बंद कर दे। इंसान के अंदर आजी तभी आती है जब उसको दूसरे अपने से बेहतर मालूम होते हैं। ये नहीं कि मैं सबसे ज्यादा बेहतर हूँ, नहीं, मैं उससे तो अच्छी हूँ, यही तो प्रॉब्लम था शैतान का, अना खैर उम्मिन, मैं बेहतर हूँ इससे। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, और कहा हमने ए आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में।
अब आप देखेंगे आगे जितना आया है ना वो सारा ड्यूल में आया, यहां पे भी ड्यूल में आ सकता था, उस कूना तुम दोनों रहो, लेकिन कहा गया तुम और तुम्हारी बीवी। एक तो हमें यहाँ पे पता चला कि हजरत हव्वा को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, और क्यों पैदा फरमाया इसके बारे में भी आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में जगह दी गई तो वो बिल्कुल अकेले थे, तो वो जाहिर है इंसान अकेला होता तो वो फील करता है ना, अच्छा नहीं उसको फील होता। तो अल्लाह ताला ने इनकी नींद में हजरत हव्वा को उनकी पसली से पैदा किया, जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि एक औरत बैठी हुई है, पूछा तुम कौन हो, बताया कि मैं एक औरत हूँ, आपकी बीवी हूँ, आपके साथ रहने के लिए और आपकी तस्कीन का सबब बनने के लिए पैदा की गई। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है फरिश्तों ने फिर पूछा कि इनका नाम क्या है, इनका नाम बताएं, हजरत आदम ने फरमाया हव्वा, उन्होंने कहा इस नाम को क्यों, क्या वजह इस नाम की, तो फरमाया ये एक जिंदा से पैदा की है ना, हई हई से। तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी अब इत्मीनान से जन्नत में रहो, वकुला मिनहा रगदन हैथु शितुमा, और खाओ पियो इसमें से तुम दोनों जो भी खाना पीना चाहो जितना चाहो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा अब या ये मैं आपको बता रही थी कि उसको ना भी कहा जा सकता था, लेकिन उसको अंतबा जौजु का क्यों कहा गया, तुम और तुम्हारी बीवी, क्योंकि इंसान की जो बी आदमी की जो बीवी होती है वो वही रहती है जहां पे आदमी रहता है, उसका घर वही होता है, औरत का घर वही है जो आदमी का घर, वो उसके साथ मूव होती है, आदमी नहीं उसके साथ मूव होता, अंतबा जौजु का, और खाओ पियो, यानी अल्लाह ताला ने उनको पूरी कुली फरागत दी, जन्नत पूरी की पूरी उनका घर थी, फिल जन्ना नहीं कहा कि जन्नत में एक जगह यहां पे तुम रहो, बल्कि जन्ना सारी जन्नत ही तुम्हारा घर है। और जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं, जीम नून, नून से है जिन, ये भी इसी से है, जिससे जिस रूट से जन्नत है उसी से जिन है, जन्नत कहते हैं छुपी हुई चीज को। अब ये इतनी ज्यादा दरख्तों से घिरी हुई है, ये छुप गई है तो इसलिए उसको जन्नत कहते हैं, तो वहां पे बहुत सारे दरख्त। अच्छा एक उस्कुन भी, उस्कुन जो है ना जैसे चलते चलते आप किसी जगह पे सुकून लेने के लिए सेटल हो जाएं, उसको कहते हैं, यानी हरकत करते करते कहीं स्टे करें, जैसे आप को कहते हैं हर रूफ पे कई सुकून लगे हुए, तो आप वहां पे क्या करते हैं मुस्तकर, मुस अब आप वहां पे रुके ना, तो ये है सुकून, अब इसी से सकना, इसी से उसकुन, सुकून लो यहाँ पे, यानी सकीनत इख्तियार करो यहाँ पे, और ये कभी हमेशा की नहीं होती, फिर आगे चलना होता है, ठीक है ना। तो इससे भी पता चलता है कि उन्होंने यही नहीं रहना था हमेशा, अल्लाह ने उनको कहाँ के लिए पैदा किया था, ऐसा नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ अपनी गलती की वजह से कोई सजा के तौर पे कुछ जमीन पे भेजे गए, वो तो ये वाकया हुआ तो उसके बाद तो भेजा गया, लेकिन अल्लाह ताला ने ओरिजिनली उनको जमीन के लिए ही पैदा किया था, जमीन के लिए, ये नहीं फरमाया कि आपको जन्नत में रहने के लिए ही पैदा किया गया है, जमीन के लिए पैदा किया था कि यहाँ पे खलीफा बनाए, तो हम समझते हैं कि नहीं वो गलती की वजह से आए उसकी वजह से हम सारे सजा भुगत रहे, नहीं, ठीक है, जमीन में खिलाफत देनी थी और उसके बाद अल्लाह ने इनाम के तौर पे जन्नत रखी। और ये भी हमें पता चलता है ना, ये जो यहाँ पे चलें फिर वो बाद में कभी बताऊंगी, वला तकरबा हादिही शजरत फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, और ना तुम करीब जाना इस दरख्त के, इस हादी ही फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, वरना तुम दोनों जालमों में से हो जाओगे। एक तो ये देखें कि यहां पे अब जब कुला की बात आई, तकरबा की बात आई, फिर दोनों को कहा तुम दोनों खाओ जो भी, लेकिन इस दरख्त के पास तुम दोनों ने नहीं जाना, इससे एक बात पहली पता चली कि दोनों को इंस्ट्रक्शन थी, ये सारी इंस्ट्रक्शन आदम अलैहिस्सलाम को भी दी जा रही थी, उनकी बीवी को भी, और क्या कहा गया दोनों इस दरख्त के पास नहीं जाना। इससे पता चलता है कि जब कोई अल्लाह का हुक्म आ जाए कि ये नहीं करना, तो उस वक्त ये कोई नहीं कह सकता नहीं ये तो फिर मैंने उसकी वजह से किया, उसका कसूर है,
جب اللہ کے احکامات ہیں تو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے جتنے بھی قرآن میں احکامات دیے گئے ہیں جو سب کے لیے ہیں وہ سارے کے لیے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو بیوی ہوں تو اس لیے میں تو مجبور ہوں، وہ کہیں بی بی ہوا کہ جو ہے نا آدم علیہ السلام نے مجھے کہا تھا اس لیے، اللہ نے دونوں کو حکم دیا، تو سارے احکامات جو قرآن پاک میں ہیں جو جنرل سب کے ہیں، خاص خاص عورتوں اور مردوں کے الگ الگ بھی ہیں لیکن جو جنرل احکامات ہیں وہ سب کے لیے ہیں. اب مثلا نماز کا حکم ہے سب کے لیے، اس میں کوئی عورت نہیں کہہ سکتی میرا شوہر ہی نہیں مانتا تو میں کیا کروں، ٹھیک ہے. تو ولا تقربا، اچھا ایک یہ بات، ہذہ الشجرہ، حاضی ہی شجرہ سے کیا پتا چلا کہ اسپیسیفکلی ان کو بتایا گیا یہ والا، بعد میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا وہاں پہ تو اتنے درخت تھے جنت میں مجھے کیا پتا. تو ان کو خاص طور پر حاضہ جو ہوتا ہے نا اشارہ قریب کا ہے، یہ اس کو بہت اچھی طرح میک شور کرا دیا گیا کہ سمجھ آ گئی ہے یہی والا ہے. اچھا اور یہ نہیں کہا گیا، آپ نوٹ کریں یہاں پہ کہ کلا منہا رغدن ہے ولا تاکلا، نہ کھانا تم ساروں کو با فراغت جہاں سے چاہو اور نہ کھانا اس درخت سے. آپ نوٹ کریں یہ والی بات نہیں ہے، نہ کھانا نہیں ہے، لا تقربا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کو پتا ہے کہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے قریب گیا تو اس میں پڑ جائے گا، وہ کر بیٹھے گا، وہ چیز اس کو اٹریکٹ کرے گی اور وہ اس میں پھنس جائے گا. آپ دیکھیں گناہوں کی یہی ہوتی ہے نا، آپ گناہ کا ارادہ نہیں بھی ہو لیکن اس مجلس میں بیٹھ گئے جہاں پہ کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر پھر انسان شامل ہو ہی جاتا ہے. نہیں نہیں ہم تو ویسے ہی جا رہے ہیں، ہم تو نہیں کریں گے، کتنا مرضی کہیں ہم تو نہیں کریں گے، آج نہیں کریں گے، کل نہیں کریں گے، پرسوں کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو برائی کا یہی ہوتا ہے، برائی شروع میں کیا ہوتا ہے، برائی کی ایکسیپٹنس آتی ہے، پھر اس کے بعد انسان برائی کرتا ہے. تو یہ جب انسان قریب جاتا ہے اس چیز کے، اس کو ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے، پھر وہ کر بھی لیتا ہے. آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں ولا تقرب الزنا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ نہیں کہا گیا زنا نہ کرنا، قریب بھی نہ جانا، یعنی جو راستے ہیں ان پہ بھی نہ چلنا کہ زنا تک پہنچ جاؤ. اور ان میں پہلا راستہ کیا ہے؟ بدنگاہی، نظر شہوت سے ڈالنا کسی پہ، یہ پہلی چیز ہے، راستے کا پہلا سٹیپ ہے. کہا گیا اس پہ بھی نہیں جانا، یہاں پہ کہا گیا اس درخت کے پاس بھی نہ جانا. دیکھیں کتنی انسٹرکشن تھی کلیئر. یہی تمام گناہوں کے لیے اسی بات کو سمجھنے، ولا تقربا، نہ ہی قریب نہیں جانا. اور یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو نہیں، ہم میں کوئی پاگل ہوں، میں کوئی بچی ہوں، میں کوئی ایسے ہوں، میں تو مجھے نہیں بھلا سمجھ ہے. نہیں، یہ سب سمجھے نا دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، شیطان ایسے غلبہ پاتا ہے، وہی کام کرا دیتا ہے انسان سے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں کے قریب لے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، جس راستے پہ جس جگہ پہ جانا ہی نہیں اس راستے پہ بھی جانے کی کیا ضرورت ہے. فتکونا من الظالمین، نہیں تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے. تو ظالم کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ظلم یہی ہے کہ انسان اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے. ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا. اور ظلم کیا ہے؟ تو کوئی جو چیز جس جگہ پہ ہونی چاہیے اسے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا. اور انہوں نے کیا ظلم کیا تھا اپنے آپ کے اوپر نا، کہ وہ وہاں پہ چلے گئے جہاں پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا نا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے انہا اس سے، اس درخت کی وجہ سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جس میں وہ تھے دونوں. پھر شیطان نے اپنا وار چلایا جو کہ آج تک وہ چلا رہا ہے، اور اس میں کیا کہ ان کو ایسا پھسلایا، ایسی قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم ایسے ہوگے. یہ قصہ دوبارہ بھی آئے گا قرآن پاک میں، 6 دفعہ اور آئے گا، 7 دفعہ ہے پورا ٹوٹل قرآن میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا इस कुरान को कि देखो इल्म का घुमंड ना आए तुम्हारे अंदर, देखो जो इल्म अल्लाह देगा बस वो ही मिल सकता है, ऐसे खुद नहीं तुम इल्म पा सकते। देखो सबसे बड़ी फजीलत सबसे पहली आदम को भी तुम्हारे बाप को किस चीज की वजह से मिली थी, इसको भूलना ना, ये इल्म है, इसको बड़ी कदर से लेना। और देखो इस रास्ते में शैतान कैसे आता है। अब वही जो अच्छे भले इल्म वाले थे आदम अलैहिस्सलाम, वो भी फंस गए शैतान के ट्रैप में। ठीक है, इससे पता चलता है अल्लाह ही बचा सकता है। हम इसीलिए अऊजु बिल्ला पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हम तेरी पनाह में आते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं बच सकते। कितना भी कोई इल्म वाला भी हो जाए ना, तो उसको भी शैतान आके वरगलाता है। एक वाक्य आता है हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में कि उनको शैतान ने वरगलाया, तो वो समझ गए कि शैतान का ट्रैप है और उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तो शैतान ने कहा ये तुम मेरे से बचे हो सिर्फ अपने इल्म की वजह से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ही की तौफीक की वजह से मैं बचाऊं, क्योंकि अब शैतान कैसे कर रहा है कि अब इल्म का तकब्बुर डाल दूं, चलो इस रास्ते से बचाया इसको तो अब ये बात अंदर डाल दूं दिल में। तो ये इल्म लेने के बावजूद शैतान फिसलाएगा। और दूसरे लोग बाज दफा, एक ये भी नादानी की बात होती है कि बाज दफा लोग कहते हैं लो जी इतना इल्म लेके फिर देखो जरा ये कर रहा है, या फलां ने ये कर दिया, या ऐसे हो गया। देखें, याद रखें, इल्म के जरिए इंसान को समझ तो आ जाती है, और आगे आप देखेंगे आदम अलैहिस्सलाम को समझ आ गई, लेकिन ऐसा नहीं कि शैतान उसके पास आता नहीं। शैतान तो जोर लगाएगा। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा था बाद में कि आया आदम आपने क्यों उसकी बात को सुना, तो आदम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, ये भी तफसीरों में लिखा कि अल्लाह मुझे नहीं पता था कि कोई तेरी कसम भी झूठी खा सकता है। क्योंकि शैतान ने कहा अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारा खैर खाऊं और तुम इस दरख्त का फल खा लो। अब दरख्त जो भी था उससे हमें कोई नहीं बहस है, क्योंकि बहुत सारी तफसीरों में ये भी लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ, बहुत सारी इसराइली रवायात इसके अंदर है कि कौन सा था दरख्त क्या था। बाहर कैफ, हमें ये देखना है कि देखो शैतान ने कैसे दोनों को बहका दिया, जहां पे करीब भी जाने से मना किया गया था उस दरख्त के करीब भी कर दिया और उसका फल भी खिलवा दिया। और फिर देखें कि उसी वक्त दोनों के लिबास उतर गए, जो जन्नती लिबास उन्होंने पहना हुआ था वो उतर गया, जो उनका पाक वो मकान था वो भी उनसे छिन गया, निकलवा दिया उसने ना उनको वहां से, इतनी खूबसूरत जगह में, ऐसी परफेक्ट जगह में रहते थे, वहां से भी निकले। तो इससे ये पता चलता है कि जब इंसान गुनाह करता है ना, तो गुनाहों की वजह से वो बाज दफा किसी नेमत से महरूम कर दिया जाता है, किसी अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाता है। ठीक है, कोई चीज उससे छिन जाती है जो अल्लाह ने उसको दी हुई थी। ये गुनाहों की नहुसत होती है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वकुल नहबितु बादुकुम लिबादिन अदुव, निकल जाओ यहां से, उतर जाओ यहां से। इसका मतलब है कि वो जन्नत जो थी कहीं, यानी कोई बुलंद मुकाम होगा जिससे कहा गया उतर जाओ, बादुकुम लिबादिन अदुव, तुम में से बाज बाज के दुश्मन है। यानी बाज बाज के का मतलब क्या, एक मतलब उलमा ने ये कहा है यानी शैतान और आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा आपस में ये एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एक पार्टी बन गई आदम और हव्वा की और एक पार्टी है शैतान की, तो बाज बाज के दुश्मन है। दूसरे ये भी इसके अंदर बात कही गई कि इंसानों में ही बाज बाज के दुश्मन होंगे, यानी बनी नौ इंसान के अंदर दुश्मनियां होंगी, या शैतान ऐसी दुश्मनियां डाल देगा। और दुश्मनियां आप देखते हैं कि कितनी होती हैं, नस्लों तक चलती हैं। तो अब कहा गया अब चले जाओ। अब वो वैसे अल्लाह ताला ने तो भेजना था जमीन में, हो सकता था कोई कोई और रास्ता होता, लेकिन अब इस वक्त क्यों भेजा जा रहा है, इनकी एक गुनाह और उनकी जो एक उनसे गलती हुई उसकी वजह से। वलकुम फिल अर्दि मुस्तकर व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और फायदा उठाना है एक वक्त मुकर्रर तक। तुम अब जाओ जमीन के अंदर रहो, अब एक गेट आउट कर दिया गया जन्नत से, इज्जत से तो नहीं जा रहे ना, ये खुदा के एक प्रोटोकॉल के साथ जाते जमीन पे तो जाना ही था, लेकिन ये कह के अब ये भी तू निकल जाओ, उतर जाओ यहां से, और तुम अब जमीन में रहो, यहाँ पे मुस्तकर है। तुम्हारा मुस्तकर क्या होता है, टेम्पररी जगह, करार की जगह है ना, करार पाने की जगह। इसको ऐसे समझें जैसे हम जब हाईवे पे जाते हैं तो रेस्ट एरियाज आते हैं ना, हम उतर के वहां पे क्या करते हैं, बिस्तर बिछा के सो नहीं जाते, या वहां पे अपना घर नहीं बनाना शुरू कर दे, या उसको डेकोरेट नहीं करना शुरू कर देते। हम क्या करते हैं, वहां पे थोड़ी देर आराम करते हैं फिर आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हमारा सफर होता है ना, मुस्तकर उसी को कहते हैं। उसी से याद रखें, करार की जगह, थोड़ी देर सस्ताने की जगह, जैसे कोई मुसाफिर जा रहा है तो किसी थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के नीचे बैठ जाए, ये है इस्तकरार। अल्लाह अकबर, हमने तो परमानेंट ही समझ लिया इसको भी, ये तो कभी खत्म ही नहीं होनी, यहीं रहना है बस। हालांकि ये मुस्तकर है, अल्लाह ताला ने एक टेम्प्रेरी एक जगह दी है कि यहाँ पे अब आप रहो और प्रूव करके आओ कि अब आप जन्नत के हकदार हो। वह मता उन इलाहीन, मता है इसके अंदर, यूटिलिटी है, सामान है, यूज का, इसमें आपकी यूज की चीजें हैं, लेकिन कब तक, इलाहीन एक वक्त तक। इससे भी पता चलता है ना कि टेम्प्रेरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, एक मुसाफिर की तरह रहो, और मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूं, जैसे कि एक मुसाफिर थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हम सबको माफ करे, क्योंकि हमारी जिंदगियां तो मुसाफिरों वाली नहीं लगती, और हमारे अमल भी ऐसे नहीं है कि जैसे कि हमने आगे कूच करना है, हमारे अमल तो ऐसे हैं कि यहीं पे रहना है। हमारी हविस, हमारी ख्वाहिशात, हमारे लालच, हमारे जो खौफ हैं, हमारे जो भरोसे हैं, वो सब ऐसे हैं कि जैसे यहीं पे, ये हमारे बस यहाँ से जाना थोड़ी है, चाहे जनाजे लोगों के उठ रहे हैं, वो जाएंगे तो जाएंगे, हमें क्या, हमने थोड़ी जाना, और अभी नहीं जाना, अगर जाना भी होगा ना तो अभी नहीं है ना, तो अभी बड़ा टाइम है। हम जिस तरह जमा करते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि जैसे परमानेंट रहना है बस। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन, बस हासिल कर लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात। अच्छा, अब कहा जाता है तफसीरों में लिखा हुआ है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतार दिया गया ना, अब वो इतने एक पशेमान हुए, एक जगह आदम अलैहिस्सलाम थे, एक जगह बीबी हव्वा थी, एक जगह शैतान को भी उतारा गया, ये भी तू कहा गया ना, प्लूरल है, इतने के ज्यादा वो परेशान थे कि ये हमसे हो क्या गया, क्या कर दिया हमने, हमसे क्यों ऐसा हो गया, यानी बहुत शर्मिंदगी। लेकिन सोचें कि उनको उस वक्त तो नहीं पता था कि तौबा कैसे करनी होती, क्या हम कहें तौबा के लिए, तो अल्लाह ताला ने उनको कलिमात सिखाए। फिर देखिए, जब इंसान पशेमान होता है ना, जब इंसान के दिल के अंदर ये बात आती है कि मैंने गलत कर दिया, यही तौबा है, ये तौबा का फर्स्ट स्टेप है। ये नहीं होता कि इंसान उसके अब गलत कर ले, उसके बाद शैतान ने जो खुद किया वही वो इंसान को सिखाता है ना, उसके बाद मानना ही नहीं है कि मेरी गलती है। ये कैसे हम मान लें कि मेरी गलती हो सकती है, शैतान ने नहीं गलती मानी, उसने ना कोई पशेमानी जाहिर की, ना कोई तौबा की, बल्कि धड़ल्ले से रहा, मेरी क्या गलती है, इसकी वजह से तूने मुझे, तूने मुझे ये किया, अल्लाह ताला को ब्लेम किया उसने। आप आगे पढ़ेंगे जब दोबारा ये किस्सा आएगा कुरान पाक में, तेरी वजह से है अल्लाह, उल्टा अल्लाह ताला को ब्लेम करने लगा। सुभान अल्लाह, इसको कहते हैं जर्फ, इसको कहते हैं सबर अल्लाह का, सबूर अल्लाह ताला के, सुभान अल्लाह के वो खड़ा होके ऐसे कह रहा है, और अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला तो कौन कहे, तो शैतान का तो एक इबलीस का एक जर्रा भी नजर ना आए, लेकिन अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी, जाओ जाके करो जो बहकाना है बहकाओ, जाओ उसको मोहलत अता फरमा दे। हमारे तो सामने हमारा बच्चा कोई ऐसे कह दे तो हम मुंह तो थप्पड़ के साथ उसकी तवाजो करेंगे। ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मैंने नहीं करना और आप मुझे ऐसे कहती हैं। हम तो नहीं ये बर्दाश्त कर सकते, तो हमारा बच्चा ही होता है तो फिर भी, और ये एक अदना सी मखलूक है अल्लाह के सामने, और अल्लाह को ये कहे तकब्बुर करके कि अल्लाह तेरी तेरी वजह से मैं बहकाऊं, तो उसने खुद को भी
मतलब नहीं झुकाया, अपनी गलती का इतराफ नहीं किया, जस्टिफाई करता रहा, और यही काम वो इंसान के साथ, बनी आदम के साथ करता है। इंसान फिर ये जो कहता है ना, मेरा क्या कसूर है, असल तो फलां का कसूर है, और फिर कई दफा हम क्या कहते हैं, असल तो शैतान ने मुझे बहकाया। तो आदम अलैहिस्सलाम भी यही कह सकते थे, अल्लाह मेरा क्या कसूर है, जब शैतान को तूने छुट्टी दी थी तो उसने मुझे बहकाया, तू ना शैतान को ये खुली छुट्टी देता, अल्लाह उसका कसूर है, उसको पकड़, मैंने क्या किया, मैं तो बस उसके कहने पे किया। हम क्या यही नहीं जस्टिफिकेशन देते? बहुत सारे लोग कहते हैं बस शैतान ने मुझसे करा दिया। तो भाई शैतान ने करा तो दिया, आगे आगे अब क्या है? पहले तो अपना कसूर ही नहीं मानना ना, पहले तो कसूर ही किसी और पे ब्लेम, फलां का कसूर, फलां का कसूर। और अगर कभी मान ही ले कि हाँ मेरी गलती है, तो मानने के बाद कितनी दफा ये फिक्र होती है कि अल्लाह अब माफ भी कर दे, नहीं हो गया तो हो गया, अब बस छोड़ो अब आगे चलो। नहीं, अल्लाह माफ कर दे और वो बंदा माफ कर दे जिसके साथ कसूर किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने तो जरा भी देर नहीं लगाई, ये नहीं सोचते रहे कि वो काफी देर सोचते ही रहे कि गलती किसकी थी। और फिर भी जैसे दुनिया के अंदर होता है, बाज दफा लोग कह कह के जबरदस्ती मनवाते हैं, आखिर अब जब कोई लोगों के सामने बस नहीं चल रहा, सबने कन्विंस कर लिया, तो अच्छा भाई फिर मेरी ही गलती है, जान छोड़ो मेरी, बस ये कह के ये भी कोई गलती मानना होता है। ये देखें अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम से सीखें, ये गलती हुई थी और मान लिया, और अल्लाह ताला मैंने भी फिर फताब आलई, अल्लाह ताला भी मेहरबान उन पे। अब वो पता है किसकी गलती बड़ी थी, आदम अलैहिस्सलाम की कि इबलीस की, किसकी बड़ी थी? अब वो पता है आदम अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी गलती थी, इसलिए कि इबलीस को तो अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, उसमें से उसने एक ने कहा कि मैंने नहीं करना। आदम अलैहिस्सलाम को तो स्पेसिफिकली अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दोनों ने ये नहीं करना, तुम दोनों ने यहाँ पे करीब नहीं जाना। आप जैसे मिसाल के तौर पे मसलन एक सदर है, वो अपनी पूरी कौम से खिताब करता है कि आप लोगों ने चोरी नहीं करनी, लेकिन उनमें से कोई चोरी करने लगता है, वो भी उसने हुक्म तो तोड़ा, लेकिन एक सदर अपने पास बुला के किसी को कहता है कि ये मेरे खास तुम बंदे हो, तो तुमने ये काम नहीं करना, और वो जाके करने लगता है। ज्यादा तुम्हें तो खास तौर पे मैंने ये कहा था, तुम्हें तो मैंने इंडिविजुअली कहा था, अकेले को कहा था, तुमने ये काम किया, तो ये बहुत बड़ी। और फिर देखिए पूरी जन्नत उनके लिए अवेलेबल थी, एक ही तो चीज से मना किया था, 100 चीजों से तो नहीं मना किया था, सिर्फ एक हुक्म था, और वो ही उन्होंने तोड़ दिया। अब सोच लें, इसीलिए एक बात ये इसके अंदर है कि ठीक है उन्होंने हुक्म तो तोड़ा, लेकिन उसके बाद जो उनकी रियलाइजेशन है ना, और शर्मिंदगी है, वो अल्लाह को पसंद आई, तौबा करना उनका अल्लाह को पसंद है। और अल्लाह ताला ने फिर उनको कलिमात सिखा भी दिए। कौन से कलिमात सिखाए? जो आते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना वा इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला तो, हमने तो अपनी जानों पे जुल्म कर दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया था ना तुम जालिमों में से हो जाओगे, तो अल्लाह जुल्म कर बैठे। हम इंसान अपने ऊपर ही जुल्म करता, जब गुनाह करता है किसी और पे नहीं जुल्म होता, वो समझता मैंने दूसरे पे ज्यादती की, नहीं अपने ऊपर जुल्म कर दिया, क्योंकि उसकी सजा तो खुद भुगतनी पड़ेगी ना। तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया उनके, क्योंकि उनकी शर्मिंदगी थी, उनका रोना धोना था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे तौबा करूं, तो अल्लाह मेहरबान हुआ। इसलिए से हमें पता चलता है कि कभी इंसान ये ना सोचे और इसकी वजह से ना रुक जाए कि अल्लाह ने पता नहीं मुझे माफ करना भी है या नहीं, अब तो इतनी जिंदगी गुजर गई है, लो अब मेरे से तो फिर पता नहीं दोबारा ना कहीं हो जाए, क्या फायदा माफी मांगने का, हज पे जाऊंगी तो एक ही दफा तौबा करूंगी, ये नहीं होना चाहिए रवैया। जो ही पता चले ना मेरी गलती है, उसी वक्त मान ले, उसी वक्त झुक जाए, उसी वक्त अल्लाह ताला के सामने अपनी शर्मिंदगी जाहिर करें। अब ये एक बात है कि इंसान जब तौबा करे तो कन्विंस होके करे कि अल्लाह अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लेगा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। देखिए फताब अलैहि, अल्लाह ताला ने फरमाया उसको
اس نے پھر مہربان ہو گیا، انہ ہوا تواب الرحیم، میں نے تواب کا معنی آپ کو کیا بتایا، بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو آدم علیہ السلام نے تو صرف ایک ہی غلطی کی تھی، بار بار کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے بار بار اس آدم سے اور اس کی اولاد سے غلطیاں ہوں گی، بار بار انسانوں سے غلطیاں ہوں گی، بھول چوک ہوگی، خطائیں ہوں گی، اس کے لیے کہا کہ بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو انسان کبھی یہ سوچ کر نہ بیٹھے کہ اب کہاں ہوگی، میں نے تو پچھلی بار توبہ کی تھی، وہ بھی تو میرے سے نہیں پھر اس پہ رہا گیا، اب میرے سے تو نہیں رہا جائے گا، توبہ قائم نہیں رہے گی، نہیں آج توبہ کروں. کبھی یہ نہ سوچو اللہ معاف نہیں کرے گا، توبہ کر کے بھی ہاں ہمیں کیا پتا اللہ نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. نہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی توبہ نہیں قبول کرنی ان کے بارے میں قرآن میں فرما دیا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی توبہ نہیں قبول ہوگی، جو سیئات کرتے ہی جاتے ہیں، جو نہ گناہ چھوڑتے ہیں اور توبہ 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 کرتے ہیں. تو نہ تو چھوڑنا ضروری ہے نا، اب گناہ بھی کرتے جائیں اور ساتھ کہیں کہ اے توبہ استغفار توبہ استغفار. ابراہیم آدم علیہ السلام پھل کھاتے جاتے اور کہتے جاتے توبہ 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 توبہ، پھل نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن ساتھ توبہ توبہ اور ساتھ کھاتے بھی جائیں. یہ آج ہمارے توبہ کے طریقے ہیں، ساتھ توبہ استغفار ساتھ وہ کام بھی جاری رکھنے. کسی چیز پتہ ہی نہیں کس چیز پہ توبہ کرنا ہے، ویسے ہمارے کوئی کام ایسے برے تو نہیں ہیں، وہ میں کون سا کچھ برا کرتی ہوں، لیکن چلو توبہ استغفار کرنی چاہیے، ویسے تو میں ایسے ہی کر لیتی ہوں. توبہ سے بڑی چیزیں ملتی ہیں، بڑے یہ کام سنور جاتے ہیں، تو اس لیے توبہ کر رہی ہوں. لا الہ الا انت سبحانک کی بھی تسبیح کیوں کرنی ہے کہ ہمارا فلاں کام صحیح ہو جائے، اس میں بھی کوئی اپنے گناہوں کا نہیں ہے کوئی خیال کہ جو ہے میرے کوئی گناہ ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اس میں بھی یہ ہے کہ کام ہو جائے کوئی. تو یہ تو ہماری توبہ کے حال ہیں، توبہ تو شرمندگی ہے، توبہ تو یہ ہے کہ انسان ریئلائز کرے میری یہ غلطی ہے اور میں نے اس کو چھوڑا ہے، اللہ میں تیرے آگے توبہ کرتی ہوں، یہ ہے توبہ. تب ہے اللہ تواب، تواب انہ بے شک وہی تو ہے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، ہوا جب آ جاتا ہے اس کے اندر تو پھر کتنا اس میں ایمفسائز ہو جاتا ہے، وہ تواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا. تو مایوس نہیں ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، ہمیشہ غلطی کر کے مان جائیں اور اللہ سے توبہ کر لیں، تو وہ بڑا مہربان ہے. اور وہ کیوں بار بار توبہ قبول کرتا ہے؟ کیونکہ وہ الرحیم جو ہے، وہ بار بار رحم کرنے والا جو ہے، اسی لیے تو بار بار توبہ قبول کرتا ہے. کل نہ بھی تو منہا جمیا، پھر بتایا گیا وہی والا سین جو وہاں پہ ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا اہ بھی تو اتر جاؤ منہا اس میں سے جمیا سب کے سب، یعنی آدم علیہ السلام بھی، حضرت حوا بھی، اور شیطان بھی. اچھا ایک بات ایک قسم میں رہ گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں خاص طور پہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے اندر یہ بہت ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو برغلایا تھا، انہوں نے ان کو پھل کھانے پہ مجبور کیا. حالانکہ آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیول کے سیگے آ رہے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، ان دونوں کو نکلوایا، ان دونوں نے پھل کھایا تھا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت حوا نے کھا لیا، سارا قصور تو ان کا تھا، ان کی وجہ سے آدم علیہ السلام بھی مشکل میں پڑ گئے، ایسا نہیں ہے. اسی لیے تو سارے ہی اترے نا، پھر سب اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یہ بات بتانی تھی جس کے لیے بتایا گیا کہ اتر جاؤ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اترنے کا حکم دیا تھا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جا تو رہے ہو، اب جاتے جاتے کیا ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنی، کہ آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے جب جب کوئی ہدایت، جب بھی آئے گی، یعنی دنیا میں تم اب جا کے رہو گے تو ہدایت کے سامان اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا. مثلاً کیسے ہدایت کے سامان؟ کتابیں اللہ بھیجے گا، رسول اللہ بھیجے گا، صحیفے اللہ بھیجے گا، تو کوئی نہ کوئی ہدایت کے سامان آتے رہیں گے تاکہ انسان کی رہنمائی رہے. فمن تبع ہدایا، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، اللہ کی ہدایت کی، کسی اوروں کی نہیں، کوئی اور پیچھے لگا لے اپنے اور کس طرف چل پڑے انسان، تو وہ نہیں، اللہ کی ہدایت کی جس نے
پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان کے اوپر غم ہوگا. خوف کس کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ فیوچر کا خوف ہوتا ہے، ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، کہیں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اور غم کس کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. فیوچر کو تو ابھی آپ نے دیکھا نہیں، اس کا غم کیا ہے؟ پیچھے کا ہوتا ہے غم کہ ایسا ہو گیا تھا ہمارے ساتھ. کبھی انسان اپنی پچھلی باتوں کو یاد کر کے رونے لگتا ہے، اتنا اس کو غم ہوتا ہے. تو یہ جو غم ہوتا ہے یہ ڈپریشن لاتا ہے، اور جو خوف ہوتا ہے یہ انگزائٹی پیدا کرتا ہے. یا آگے پتہ نہیں آئے کیا ہو جائے گا، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے یہ، وہ خوف ہے. ٹھیک ہے. اور غم، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے ساتھ کیا وعدہ ہے، اس کے لیے نہ خوف ہے، نہ فیوچر کے لیے اس کو خوف رہے گا، نہ غم اس کو ہوں گے. کیا وہ ساری چیزوں آزاد ہو جائے گا؟ کیا اس کو کوئی زندگی کے اندر کوئی دکھ آئے گا ہی نہیں؟ یہ کہا گیا. یا اس کے لیے کوئی فیوچر کے اندر کوئی مسئلہ خطرہ ہوگا ہی نہیں؟ نہیں. دنیا میں تو ظاہر ہے غم بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی ہوں گی، خوف بھی ہوں گے، لیکن جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو اس ہدایت کو پکڑ کے رکھے گا، جیسے آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہدایت کا سامان، اللہ کی جو ہدایت ہے، قرآن. جو اس کے فالو کرے گا، اس کے لیے خوف اور غم نہیں رہے گا. کیسے نہیں رہے گا؟ یعنی یہ قرآن تسلی دے گا، یہ قرآن ڈھارس بندھائے گا، یہ قرآن ساتھی بن جائے گا. یہ قرآن اتنی پیاری تسلیاں دیتا ہے کہ انسان کو کوئی دوسرا انسان نہیں ایسی تسلی دے سکتا. اسی لیے کتنے لوگ، جیسے کہتے ہیں جن کو میں نہیں جانتی، کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کلاس میں ایسی بات سنی، وہ تو اس دن ایسے لگ رہا تھا میرے لیے یہ میرا یہ مسئلہ چل رہا تھا، اس کا جواب آ گیا اور مجھے اتنی تسلی ہو گئی، میری یہ فلانی پریشانی چل رہی تھی، ہم اس پرابلم میں تھے، جیسے اس کا مجھے جواب مل گیا. تو واقعی جب انسان اس ہدایت کی پیروی کرتا ہے نا، اس کو فالو کرتا ہے، تو پھر فیوچر کے جو خوف ہیں، اندیشے تو ہوتے ہیں ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ، لیکن قرآن سے ہی انسان کو تسلی ملتی ہے. پیچھے کے غم بھی آتے ہیں، دل میں خیالات آتے ہیں، یہ ہوا اور انسان کو رونا بھی آتا ہے، لیکن قرآن پہ دل کو تھام لیتا ہے. اور یہ کیوں اتنا ضروری ہے خوف اور غم سے بچے رہنا؟ کیونکہ یہ انسان کو ناکارا بنا دیتے ہیں، کسی کام کا نہیں چھوڑتے. اب وہ پتا ہے ڈپریشن ہو جائے تب بھی انسان ناکارا ہو جاتا، انگزائٹی بہت رہنے لگے تو تب بھی وہ بستر پہ پڑ جاتا. اچھا، اور اس کے لیے مسنون دعا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حزن سے بھی پناہ مانگی، میں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی انسان کو، انسان کے لیے ہیلتھ وائز تو بری ہیں یہ چیزیں، لیکن انسان کو کسی عمل کے قابل نہیں رہنے دیتے. تو ایک تو دنیا میں اس کا یہ فائدہ، دوسرا آخرت میں تو ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے لیے وہاں پہ وہ پروٹوکول ہوگا کہ ان کا، جیسے آج بھی ہم ایک خوف میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہو، پتہ نہیں وہاں پہ ہمارے لیے کیا سلسلے ہوں، پتہ نہیں کہیں ریاکاری نہ آئے، لیکن جب وہاں پہنچ جائیں گے کوئی خوف نہیں، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے اپنا انجام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اتنا اکرام ہوگا اور ان کو پیچھے کا کوئی غم نہیں ہوگا، جو پیچھے چھوڑا ہے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا اور آگے کا کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف من تبع ہدایا، جو فالو کرے میری ہدایت، اس قرآن کے اوپر چلنا ضروری ہے. اسی لیے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مالدار ہو کے بھی، ملینئر بلینئر ہو کے بھی بے چین، اور ان کی زندگی اس قدر بے سکونی کی ہوتی ہے، اور کئی کٹیا میں رہ کے بھی سکون سے ہوتے ہیں. ان کو کیا مل گیا اور ان کو کیا نہیں ملا، یہی فرق ہے. یہ مال وغیرہ ہونے سے ہم سوچتے ہیں اس سے مجھے کوئی فیوچر کے خوف نہیں رہیں گے، آئے میرے سارے خوف دور ہو جائیں گے، سیکیور ہو جائے گا میرا فیوچر. اور کئی تو کہتے بھی ہیں سیکیور یور فیوچر، یہ کیا سیکیور ہے فیوچر کرنا؟ کبھی پیسے سے بھی فیوچر سیکیور ہوا؟ کبھی چیزوں سے فیوچر سیکیور ہوا؟ اللہ نے فیوچر سیکیور کرنے کا نسخہ قرآن میں بتا دیا. کیا ہے فیوچر سیکیور کرنے کا نسخہ؟ من تبع ہدایا، میری ہدایت کی پیروی کرو، تمہارا فیوچر سیف ہو جائے گا. اس کی طرف توجہ نہیں کہتے، اتنے کما لیں گے نا پھر آرام سے بیٹھیں گے، پھر آرام والی زندگی ہوگی،
ओ भाई जिनके पास इतना है देखो तो सही, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। शोहरत भी है, पैसा भी है, हर हर तरह की लग्जरी भी है, क्या चीज नहीं है उनके पास? ये सुकून ही तो नहीं है। देखो कैसे खुदकुशी कर रहे हैं, देखो कैसे गोलियां खा के सोते हैं। तो तुम सोचते हो कि ये पैसे के साथ सुकून मिलेगा? पैसे के साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा? ये अल्लाह ने यहां बता दिया। और इसको इसको अब ये है हमारा इम्तिहान कि हम क्या वाकई यकीन रखते हैं ला रईबा फी में, इसमें कोई बात शक वाली नहीं है इस कुरान में। तो जब ये भी हमने पढ़ा है ना, तो याद रखे ला रईबा फी, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने जब कह दिया जो इसको फॉलो करेगा खौफ और गम नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा फिर। ये हमारा ईमान होना चाहिए। तो फिर जब हमें ये ईमान लाएंगे तो फिर हम दौड़ेंगे इसकी तरफ कि नहीं, हमें इसकी इत्तेबाई करनी है। दुनिया जो भी कहते रहे, हमें इसको इसको फॉलो करना। लोगों के तरीकों को नहीं, अल्लाह ने फरमाया मेरी हिदायत हो। फिर और खौफ किसके होते हैं? इसकी बातें हो जाए, वो बातें करेगा, पीयर प्रेशर का, इसका हम जमाने से पीछे रह जाएंगे, हमें कोई दोस्ती नहीं हमसे करेगा। नहीं, तुम अल्लाह की हिदायत की पैरवी करो, सब खौफ दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला देखना तुम्हारे दिल को कैसे पुरसकून कर देगा। तो बाहर की चीजें नहीं चेंज होंगी, अंदर चेंज हो जाता है। वल्लदीन कफरू वकज्जबू बिआयातिना, और जो कुफर करेंगे और उन्होंने झुटलाया इन आयात को, हमारी आयात को, जो निशानियां अल्लाह की तरफ से आएंगी, चाहे वो मोजजात की सूरत में हो, चाहे वो वही की सूरत में हो, उनको जो इनकार करता है कि मैं नहीं मानता, और तकजीब करता है, इससे आगे बढ़ के कहता है कि मैंने झुटलाया, मैंने रिजेक्ट किया, और दूसरों को भी कहता है रिजेक्ट करो ढिटाई के साथ, ये गलत है, ये कहना शुरू कर देता है। एक होता है ना खुद नहीं मानना, एक होता है खुद बुलंदो बांग बोलना भी शुरू कर देना, उलाए का साबुन्नार, ये लोग आग के साथी हैं। तो एक एक रास्ता कौन सा था? इसको मान के इस पे चल पड़ना। दूसरा रास्ता कौन सा? इसका इनकार करना। दोनों के अंजाम आपके सामने आ गए, एक असाबुल नार है और एक कौन है? अब आप सोचते होंगे असाबुल जन्ना। हाँ, कुराने पाक में अल्लाह ताला ने जहां जहां पे भी जहन्नुम का जिक्र फरमाया, साथ जन्नत का भी जिक्र फरमाया, जहां पे वहां का बुरा अंजाम दिखाया वहां पे अच्छा अंजाम भी दिखाया, यहाँ पे जन्नत का तो जिक्र है नहीं। हसन में फला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून में यही तो छुपा हुआ है, जन्नत में ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। असल खौफ और गम जो खत्म हो जाना है, वो वहीं जाके हो सकता है। दुनिया में उसका सिर्फ ट्रेलर होगा, जो सुकून दुनिया में मिलेगा। जैसे इमाम इब्ने तैमिया फरमाते थे ना, मेरी जन्नत तो मेरे अंदर है, मेरी जन्नत कोई मेरे से छीन नहीं सकता, मेरी जन्नत मेरे दिल में है। तो उलाए का साबुन नारी हम फिया खालिदून, यही लोग हैं आग के साथी हैं, और वो हमेशा इसमें रहने वाले हैं। अल्लाह ताला अपनी हिदायत के ऊपर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तकब्बुर से हम सबको महफूज रखे, हसद से हम सबको महफूज रखे, अपनी नाफरमानी से हम सबको महफूज रखे। अल्लाह हर उस रास्ते से हमें महफूज रखना जो तेरी नाराजगी का रास्ता हो। अल्लाह ताला हमें तौबा करने की, सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा, कि हम तवाबीन में अल्लाह ताला हमें शामिल फरमा दे, हम हमेशा सच्ची तौबा करने वाले रहें, कभी तकब्बुर ना हमारे अंदर आए कि हमारी कोई गलती नहीं है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون